જય રાધા માધવ કુંજ વિહારી જય રાધા માધવ કુંજ વિહારી ગોપી જનવલ્લભ ગિરિવર ધારી ગોપી જનવલ્લભ ગિરિવર ધારી યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન યમુના તીરાવન ચારી જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી જય ગોપીજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન યશોદાનંદન વ્રજ જનરંજન જમુના તીરવન ચારી જમુના તીરવન ચારી જય રાધા માધવ કુંજ વિહારી હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ राम तमो नाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम जय गौरनिताय जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद
श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की श्री श्री पतितपावन गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेत गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके
आज हम श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय जो कि ब्रह्मांड के प्रशासक मनु अंतर्गत श्लोक संख्या 3 पाठ करेंगे।
यद्यस्मिन् यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता ह्यतीते नागते द्यवाम् यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता ह्यतीते नागते द्यवाम् यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता ह्यतीते नागते द्यवाम्
स्मिन् भगवान विश्वभावनः हन कुरुते कर्ताम् एतवाम् यद्यस्मिन् यंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ताम् ह्यतीते नागते द्यवाम् अस्मिन् यंतरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यति तेनागते विवा मताजी तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यदि तेनागते द्यवा यद्यस्मिन्नन्तरे भवन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यदि तेनागते द्यवा
शब्दार्थ या जो भी कार्यकलाप यस्मिन किसी विशेष युग में अंतरे मन्वंतर में ब्रह्मन् हे ब्राह्मण भगवान श्री भगवान विश्वभावनः इस दृश्य जगत को संपन्न करने वाले कृतवान किया गया कुरुते कर रहे हैं कर्ता तथा करेंगे ही निसंदेह अतीते भूतकाल में अनागते भविष्य में अद्य वर्तमान में वा अथवा अनुवाद एवं भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद हे विद्वान ब्राह्मण कृपा करके इस दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उन सारे कार्यकलापों का वर्णन हमसे करें जिन्हें उन्होंने विगत मन्वंतर में संपन्न किया जो वे वर्तमान में संपन्न कर रहे हैं तथा जो भी जो वे भावी मन्वंतर में संपन्न करेंगे। तात्पर्य श्रीमद् भगवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है कि युद्ध भूमि में उपस्थित स्वयं वे तथा अन्य सारे जीव भूतकाल में विद्यमान थे वे इस समय उपस्थित हैं और भविष्य में भी अस्तित्व में रहेंगे। भूत वर्तमान तथा भविष्य श्री भगवान तथा सामान्य जीवों के लिए सदैव रहते हैं। नित्यो नित्यानामश्चेतनश्चेतनानाम श्री भगवान तथा जीव दोनों ही शाश्वत तथा सचेतन है किंतु इनमें अंतर यह है कि श्री भगवान असीम है जबकि जीव सीमित है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक वस्तु के स्रष्टा हैं और यद्यपि जीव उत्पन्न नहीं किए जाते हैं अपितु ये भगवान के साथ नित्य उपस्थित रहते हैं किंतु फिर भी उनके शरीर उत्पन्न होते हैं जबकि श्री भगवान का शरीर कभी उत्पन्न नहीं होता। श्री भगवान तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता लेकिन बद्ध जीव शाश्वत होते हुए भी अपने शरीर से भिन्न होता है। क्षमा करेंगे, थोड़ा गला में कब बैठ गया। ओ ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वीशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलीम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। बर्हा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णीकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती जमालां रन्ध्रान् वेणुं रदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं। यद्यस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्वभावनः कृतवान कुरुते कर्ता ह्यतिते नागते द्यवा। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके इस दृश्य जगत को संपन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उन सारे कार्यकलाप का वर्णन हमसे करें जिन्हें उन्होंने विगत मन्वंतर में संपन्न किया, जो वे वर्तमान में संपन्न कर रहे हैं, तथा जो वे भावी मनमंत्र में संपन्न करेंगे। तो कल हम अष्टम स्कंद का प्रारंभ पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी बहुत सुंदर भाव से उपक्रम के साथ है उन्होंने प्रारंभ किया, बहुत सुंदर मनवंतर के बारे मनुओं के बारे में वर्णन किया। तो अभी जैसे अध्याय शीर्षक है ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। हम एक राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र का एक एक नेता होते हैं, प्रशासक होते हैं, तो उनके अधीन में बहुत सारे मंत्री और शासक गोष्ठी रहते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का प्रशासक मनु ने परिचालना की है। उन मनुओं का वर्णन थोड़ा स्टैटिस्टिकली हम थोड़ा संक्षेप में करेंगे। जैसे कि कहा गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु आते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु आते हैं, और प्रत्येक मनुओं का कार्यकाल कितने है तो और उन मनुओं के नाम क्या है जो 14 मनु है, तो उनका नाम इस प्रकार है। पहला है स्वयंभुव मनु जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, स्वारचिष मनु, उत्तम तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत जो अभी चल रहा है जिनका कार्यकाल, ब्रह्मा जी का जो परार्ध है अर्थात आयु का अर्ध भाग संपन्न हो चुके हैं, और द्वितीय परार्ध अर्थात द्वितीय अर्ध के जो मनु है ये हमारे वैवस्वत मनु है। सावरणी मनु, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी, इस प्रकार ये 14 मनु ब्रह्मा जी का एक दिन में आते हैं। तो एक मनु का कार्यकाल होता है 71 चतुर्युग, जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चारों मिलाएंगे एक दिव्य चतुर्युग होता है। इस प्रकार ये चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग होता है, इनको इस प्रकार 71 ये चतुर्युग एक मनु के कार्यकाल है। तो इन मनुओं के कार्यकाल कितने लंबे हैं और उससे कल्पना कीजिए कि ब्रह्मा जी का कार्यकाल कितने बड़े, एक दिन में रात्रि को छोड़कर, रात्रि फिर और है 12 घंटे और बाकी हैं ब्रह्मा जी का। इस प्रकार मनुओं का एक महीना, फिर वर्ष, फिर 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी जीते हैं। अब इन मनु जो शासक है ये सब एडमिनिस्ट्रेटर है, ये शासक है, प्रशासक है, तो कैसे भगवान ने इनको सृष्टि करते हैं। और महाराज परीक्षित का मन में यही शंका है, शंका नहीं प्रश्न है कि हे प्रभु, सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे स्वामी, हे गुरुदेव, आप कृपा करके पहले तो तृतीय स्कंद में प्रथम मनु जो ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभुव मनु के बारे में वर्णन किया है, तो उसके पश्चात और जो बाकी जो मनु हो गए अभी तक और 6 मनु, उनको छोड़कर, पहला वाले को छोड़कर और 6 मनु तो कुल उनका कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं। सप्तम मनु जो वैवस्वत मनु है उनका कार्यकाल चल रहा है, और आगे जो होने वाला है, जो आने वाले मनु है उनके बारे में भी वर्णन कीजिए। तो उन मनुओं को तो उन्होंने ये कहते हैं यत अस्मिन अंतरे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इन मनुओं के एक कार्यकाल के पश्चात जो दूसरे मनु आते हैं, उन मनुअंतर में भगवान विश्वभावन जो ये सृष्टि को सृजन किए हैं, तो उनके कार्यकलाप के बारे में आप बतलाइए। तो जितने भी मनु आते हैं, तो देखिए सभी मनु के प्राय भगवान कुछ ना कुछ कार्य संपन्न करने के लिए तो उन मनवंतर में आते हैं। तो उनका जिज्ञासा है कि आप कृपा करके अब उन भगवान का कार्यकलाप का विषय में आप वर्णन कीजिए हमसे। ऐसे कहते हैं कि जो हो चुके हैं और जो अभी चल रहे हैं और जो आने वाले हैं, सभी मनुओं के बारे में आप विस्तार वर्णन कीजिए। तो मनुओं को जब भगवान का लीला श्रवण करना हो, तो फिर ये मनुओं का बारे में क्यों इतना जिज्ञासा है? क्योंकि मनु ये सब ये शासक गोष्ठी है और ये सब भगवान का अनन्य भक्त है। जब तक संसार में भगवान का भक्त अगर इसी प्रकार शासन क्षेत्र में नहीं रहेंगे, तो शासन को परिचालना करना बड़ा मुश्किल है। हमें श्रीमद् भागवतम में हम सुने हैं और पढ़े हैं किस प्रकार कभी कभी एक एक दुष्ट राजा आ जाते हैं, जिनके द्वारा प्रजाओं ने बड़ा उत्पीड़ित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसे कि राजा बेण, तो उन्होंने इतना सताया प्रजाओं को, ब्राह्मणों को कोई भी कार्य करने नहीं दिया। जो भी अग्निहोत्रादि यज्ञ और ब्राह्मणों का जो कार्य है, तो उनको संपन्न करने नहीं दिया। चोरी डाकू ये सब तस्कर सब बढ़ गए। फिर धरती इतना असह्य हो गई कि जो भी धरती उपजा रही थी, तो वो सब देना बंद कर दिए। तो इसलिए सभी मनु ये भगवान के भक्त है। और कल जैसे महाराज जी वृंदावन चंद्र महाराज जी बोल रहे थे कि उनका गुरु भाई जो गौर कृष्ण महाराज, वो कहते थे मनुओं का इलेक्शन नहीं होता है, वो सिलेक्शन होता है। तो सही है, क्योंकि भगवान उनको भेजते हैं, या प्रजा नहीं उनको इलेक्शन द्वारा तो उनको चुनते नहीं, तो भगवान भेजते हैं। तो उन मनवंतर में जो जो सब भगवान आते हैं, तो उनका बारे में आप कृपा करके बतलाएं। तो विशेष करके हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम 10 चीजों पर आधारित है। उन्हीं का ऊपर ही ये श्रीमद् भागवतम वर्णन किया गया, जिसको सर्ग कहते हैं, विसर्ग। इस प्रकार 10 प्रकार, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयः मन्वंतरेशानो कथा निरोध मुक्तिराश्रय। ये 10 चीजों को श्रीमद् भागवतम वर्णन करते हैं। तो ये क्या चीज, उसमें मन्वंतर का बात आई है। ये कहते हैं मन्वंतर ईशानुगत, मन्वंतर इसमें आई है। तो हम संक्षेप में थोड़ा ये करेंगे। तो ये क्या चीज, ये 10 चीज क्या है? जैसे कि सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, ऊत है, ये सब क्या है? तो संक्षेप में हमें कहेंगे, श्रीमद् भागवतम का प्रथम द्वितीय स्कंद जैसे उपक्रम है, भागवतम का प्रारंभ में उपक्रम किया जाता है, विषय वस्तु क्या है उसका संक्षेप में उपक्रम में वर्णन किया जाता है। तो प्रथम द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद से शुरू होता है, ये कहते हैं सर्ग। तृतीय स्कंद में सर्ग, तृतीय स्कंद को सर्ग कहते हैं। क्यों ना, इसमें सूक्ष्म सृष्टि का जो तत्व है, तो उनका बारे में वर्णन है। इसे करके भगवान कपिल ने माता देवहूति से इन सांख्य दर्शन का बलिभांति उनको श्रवण कराए, और जिस श्रवण से तो माता देवहूति को भी भगवत धाम पधारने पड़े। तो ये तृतीय स्कंद ये सर्ग कहते हैं उनको, और चतुर्थ स्कंद जो है ये भी सर्ग है। क्यों ना, ब्रह्मा जी से लेकर चराचर जगत के जो सृष्टि है ये द्वितीय सेकेंडरी क्रिएशन है, तो विसर्ग कहते हैं। और पंचम स्कंद है, ये है स्थान। क्या स्थान है, स्थान का वर्णन करते हैं, प्रतिक्षण विनाश, विनाश और बदलने वाले सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान को जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसे स्थान कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जगत का एक नाम है संसार, संसार का अर्थ होता है संसरतीति संसार, जो हर पल परिवर्तन होता है तो उसका नाम है संसार। तो ये कहते हैं जो विनाशशील परिवर्तन, मतलब विनाश जो पूर्व में था वो विनाश हुआ और अन्य रूप में आए, तो यही है संसार का नियम है, इसी को संसार कहते हैं। परिवर्तनशील जो होता है तो उसी का नाम है संसार, और इसमें हर पल हर चीज बदलते रहते हैं। इस प्रकार ये सृष्टि को एक मर्यादा में जो रखने वाला एक विशेष कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो इनका मर्यादा को अंकन करें, स्थिर करें, ताकि कोई भी वस्तु अपना मर्यादा को लंघन न करें। सृष्टि का नियम है, तो इसलिए केवल भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि का नियंता है और स्रष्टा भी है और पालक भी है। तो इसलिए तो उन्होंने जो मर्यादा स्थापन की, तो मर्यादा को स्थापन करके जो उनमें जो श्रेष्ठता है उसी को प्रतिपादन करने के लिए तो ये उसी को स्थान कहते हैं। और छठवां स्कंद में पोषण, भगवान के अपने भक्तों पर जो अहेतु की कृपा है तो उसका नाम है पोषण। बिना पोषण में कोई ष्ठ जीवित तो नहीं रह सकता है, केवल एकमात्र भगवान विष्णु जो कि समदर्शी है वही ही पोषण कर सकते हैं, सभी नहीं कर सकते। विषम भावना से कोई किसी संस्था किसी संप्रदाय का पोषण नहीं होता है, वो बहुत जल्दी उसका विनाश अवसंभावी। तो भगवान इसका पोषण करते हैं, तो छठवां स्कंद को पोषण कहते हैं। और सप्तम होता है उति, उति का अर्थ होता है जीवों के जो वासनाएं हैं जो उन्हें कर्म बंधन से डाल देती है उसे उति कहते हैं। जीवों को इस प्रकार सृष्टि भगवान ने कराई कि थोड़ा सा उनको स्वाधीनता दे दिया, और उस स्वाधीनता के कारण जीव अपना उस स्वाधीनता को दुरुपयोग करके किस प्रकार संसार बंधन में दीर्घ काल तक पड़ा रहता है, और उस संसार में किस प्रकार कष्ट जिसको भगवान एक लेबल चिपका दिए दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है और ये क्षणभंगुर है, ये विनाशील है, विनाशी है। तो उसमें जीव किस प्रकार कष्ट को भोग करता है, ये कष्ट भोगते हुए जिनका मन में इस संसार प्रति वैराग्य नहीं आया तो मानो ये द्विपद पशु है, द्विपद पशु है। इसलिए उपनिषद में मंत्र आते हैं परीक्ष लोकान कर्मजितान ब्राह्मण निर्वेदम आयाति नास्ति अकृतकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत समित पाणि श्रुत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो संसार को पहले हम तो प्रचार करते हैं, बाहर जाकर प्रचार करके लोगों को लाते हैं, आइए ब्रह्मचारी बनिए, हमारे कंग्रीगेशन डिवोटी बनिए। लेकिन उपनिषद वेद प्रतिपादन करते हैं नहीं, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयाति। संसार को उन्होंने पल पल अनुभव किया और देखा, अपना जीवन में निभाया, क्या ये संसार दुखदायी है, यहां जहां भी हम हाथ लगाते हैं वहां दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता है, तो ये सारे संसार दुखपूर्ण है, तो उससे कैसे हम ऊपर उठेंगे। अर्थात उस व्यक्ति जो संसार को अनुभव किया है तो उनका मन में ये प्रश्न खड़ा हो गया कि मनुष्य जीवन क्या इस दुख भोगने के लिए है, केवल दुख भोगने के लिए, ना इससे अतिरिक्त और कुछ है। तो फिर उन्होंने उस जिज्ञासा को लेकर स गुरुम एवाभिगच्छे, तो गुरुओं के पास जाकर जो उस तत्व का बारे में जानते हैं तो उनको बतलाते हैं। ये तो संक्षेप में कहा। उसके बाद जो जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। सेम मीनिंग, एक अर्थ है। और जब जाता है समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये गुरु किस प्रकार होना चाहिए, श्रोत्रिय, क्षत्रिय नहीं, श्रोत्रिय। श्रोत्रिय शब्द का ऐसे ही व्युत्पत्ति है, जिन्होंने वेद अध्ययन, वेदम अधीते जानाति वा, तो जो वेद को अध्ययन किया और जाना वही श्रोत्रिय है। इस प्रकार श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, अगर श्रोत्रिय है केवल ब्रह्म वेद अध्ययन किया, ब्रह्म को नहीं जाना, वो फिर गुरु पदवाच्य नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने बार बार उल्लेख करते हैं सुपच गुरु क्या है? सब नहीं, षटकर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न्यस्यात सोपचो वैष्णव गुरु। एक सोपच, सो मतलब कुत्ता, उनको जो पकाकर खाते हैं सोपच, ये गुरु हो सकता है अगर जो भगवान को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं। और ब्राह्मण होकर षटकर्म, छह कर्मों से निपुण होता हुआ जो ब्रह्म को नहीं जानते हैं, तो वो गुरु पदवाच्य नहीं है। तो इसलिए वो ब्राह्मण जाता है गुरु के पास उन तत्वों का जिज्ञासा लेकर, और तस्मात् स गुरुम उपसन्नाय प्रशांत सम्यक प्रशांत चिताय समन्विताय। और जिनका संसार के प्रति समस्त जो आंतरिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, संसार में कोई भी वस्तु उसका इच्छा का विषय नहीं बनते, तो समान्विताय तस्मै प्रवाच ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या को, वो भगवत तत्व विज्ञान को वो गुरु उनसे बतलाता है। और तत्क्षण, तत्काल ही उनका हृदय में वो धारित हो जाता है, क्योंकि परिपक्व है। जैसे खेती में पूरा बिल्कुल हल चलाकर किसान पूरा रेडी कर रखता है, वर्षा के इंतजार में है, बीज बोता है तो अंकुर आ जाता है, तो उसी प्रकार वो इतना जिज्ञासु है, संसार का ये उत्पीड़न को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने इस प्रकार जिज्ञासा लेकर उस ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाते हैं और उनका उनका सेवा करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके भगवत प्राप्ति का मार्ग को अपनाते हैं। ये है उती का हमें इका। इसके बाद आता है अष्टम में मन्वंतर का वर्णन। मन्वंतर के अधिपति जो मनु राजा, ये पालन रूप ये कहते हैं शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, सुधर्म का, शुद्ध नहीं शुद्ध, सुधर्म का जो अनुष्ठान करते हैं, ये मनुओं का यही विशेष है, विशेषता है। क्या है ना, सुधर्म का अनुष्ठान करते हैं, जो भगवान के द्वारा जो प्रणीत नियम को वो बिल्कुल अक्षर अक्षर से वो पालन करते हैं और अनुरूप अपना जीवन में और प्रजाओं को भी शिक्षा देते हैं और उन मार्ग पर उनको चलाते हैं। ये इसीलिए परीक्षित महाराज का मन में इस प्रकार प्रश्न ये हो गया कि आप कृपा करके उन मनुअंतर का अंदर जो भगवान आते हैं उन मनुअंतर भगवान का लीलाओं का वर्णन मुझे कराइए। तो राजा जो पालन रूप सुधर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं उनको मनुअंतर कहते हैं। ये मनुअंतर इस प्रकार ये 14 मनु ब्रह्मा जी का एक दिन में ऐसे ही ब्रह्मा जी का पूर्ण कार्यकाल में हजार मनु आते हैं और जाते हैं। फिर आता है नवम स्कंद ईशानु कथा, भगवान और भगवान के भक्त की विविध आख्याओं को ईशानु कथा कहते हैं। भगवान, भगवान शब्द ऐसे ही है, ये सापेक्षिक अर्थात ये किसी को भक्तों को अपेक्षा करके ही कहा जाता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये कहते हैं ये अलग अलग नहीं है, ये सब संबंधित है, एक बिना दूसरा नहीं रह सकता है। जैसे संबंध शब्द है ये द्विष्ट होता है, दो में होता है, दो नहीं होगा तो संबंध नहीं है, अकेले है तो संबंध नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान भक्त और भक्ति ये इनको लेकर भगवान, और जब तक भक्त रहेंगे संसार में सृष्टि रहेगी तब तक भगवान है, और भगवान जब तक है सृष्टि भक्त और ये सब चलते रहेंगे। तो भगवान और भक्तों का जो वर्णन है यही ही जीवन का सार उपलब्धि है। और दशम स्कंद को निरोध कहते हैं। निरोध, जब भगवान योग निद्रा का आश्रय ले शयन करते हैं तो उस समय जीव अपने उपाधियों के साथ प्रभु में लीन हो जाते हैं, वही निरोध है। जब भगवान अपना योग, भगवान में निद्रा तभी आती है जब हमारे अंदर तम प्राधान्य होता है, तमगुण का आधिक्य जिस समय होता है हमको नींद आती है। तो भगवान तमगुण के अधीन नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि योग माया के आश्रय लेकर सृष्टि का ये नियम है, भगवान ने नियम बनाए, क्योंकि और दूसरा सृष्टि को जाएंगे तब तो उन्होंने योग माया का आश्रय को लेकर जो शयन में जाते हैं सारे जीव उपाधियों सहित भगवान में लीन हो जाते हैं, यही है निरोध, यही है निरोध। जीव यहां पे कहा गया कि सारे जीव अपने उपाधियों के सहित भगवान में लीन हो जाते हैं जब भगवान शयन करने में जाते हैं, महाप्रलय जिसको कहते हैं, सृष्टि का लोप होता है। ये उपाधि क्या है, किसको लेकर वो जाते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उपाधि क्या है, उपाधि अब जिस स्थिति में आप है ये सब सारे उपाधि, ये संसार बिल पूरा पूरे कुछ संसार ये सब उपाधिग्रस्त है। उपाधि मतलब आगंतुक, हम आगंतुक नहीं है, आत्मस्वरूप में हम तो नित्य है। भगवान कहते हैं ममैमांस जीवलोके जीवभूत सनातनी, सनातन का अर्थ होता है नित्य, हमारे आना जाना नहीं है संसार में, हम भगवान के साथ नित्य रहते हैं। लेकिन ये शरीर संबंधी ये जो संसार है ये सारे उपाधियां हैं, ये सारे उपाधियां हैं, ये आए हैं और जाएंगे, ये जाएंगे, लेकिन ये ऐसे ही छूटने वाला नहीं है, ये शरीर चला जाएगा, दूसरे शरीर आप ये सूक्ष्म शरीर को मिल जाएगा, लेकिन उसको तर्क से, युक्तियों से इनको हटाना पड़ता है, तभी वो फिर दोबारा ये संसार में नहीं आते हैं। और जब तक उपाधि से ग्रस्त हम रहेंगे, तब तक हमको ये संसार में आना जाना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मरेंगे तो जन्म अवश्य, और जब जन्म लेंगे मरना अवश्य। ये संसार का नियम है, इसका नाम है मर्त्य, मरण धर्म। जो भी यहाँ आएंगे सभी को मरना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य। एक तो परमात्मा भगवान नित्य है और जीव उनका अंश है, वो भी नित्य है, और दूसरा ये है, और ये कहते हैं ध्रुव मतलब नित्य, ऐसे सापेक्ष का नित्य है। जो जन्म लेगा अवश्य ही उसको मरना पड़ेगा, और जो नहीं मरते हैं तो फिर वो नहीं जन्म लेते हैं। तो कौन नहीं मरता है? जो संसार में आए सबकी तो मरना ही पड़ेगा, तो फिर कौन नहीं मरेगा? ये कहते हैं जो वैष्णव जन होते हैं वो मरते नहीं, उनका अंतिम शरीर पात ये है, अंतिम शरीर ये, और दोबारा उनका जन्म नहीं, इसलिए उनको मृत्यु नहीं कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम परमहंस परिव्राज, ऐसे ही हम कहते हैं। तो ये है निरोध, और अंतिम ये हुआ मुक्ति। हम जानते हैं भागवत में वर्णन है, और प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति का परिभाषा है जो हमारे अन्यथा रूप उसको परित्याग करना है। अन्यथा रूप क्या है? हम आत्मस्वरूप सच्चिदानंद है, लेकिन हमारे शरीर के साथ इतना तादात्म्य अध्यास हो चुके हैं तो शरीर को ही मैं मानता हूँ, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसे ही कहता है, लेकिन आत्मा कभी ना सुखी, वो सच्चित आनंद है, वो दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता है। पर अज्ञान बस हम शरीर से इतना तादात्म्य कर देते हैं तो शरीर को ही मैं कहता हूँ। शरीर में चोट आए तो फिर हम कहते हैं मुझे पीड़ा हो रही है। तो ये है अध्यास। तो इसलिए इन उपाधियों को मुक्ति अन्यथा रूपम हित्वा, ये सब अन्यथा रूप है, हम सच्चिदानंद उससे अतिरिक्त जो है, ये शरीर को आप देखते हैं विनाशील, ये उत्पाद्य संस्कार्य विकार्य आप्य, ये मरण धर्म शरीर का ही लक्षण है, लेकिन अनुत्पाद्य अप्राप्य असंस्कार्य अविकारी ये आत्मा का धर्म है, लेकिन वो आत्मा धर्म हम है, वो आत्मा हम है, हमारे कभी इस प्रकार विकार प्राप्त नहीं होता है, लेकिन शरीर का विकार से हम शरीर से इतना तादात्म्य करने के कारण हम अपने को विकारी मानते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये उपाधि वो आएंगे जाएंगे, क्योंकि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जैसे पुराने कपड़े को हम फेंक देते हैं और नूतन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये शरीर, ये जो पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग देता है, फिर नूतन शरीर ग्रहण करता है, फिर माता के गर्भ में आते हैं, फिर भूमिष्ठ होते हैं, फिर इच्छे षड विकारों से ग्रस्त होकर अंत में फिर विनाश को प्राप्त होते हैं। ये है मुक्ति, मुक्ति का परिभाषा देते हैं अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण, हमारे स्वरूप है सच्चिदानंद, यही व्यवस्थित है। और अंतिम जो द्वादश स्कंध है वो आश्रय है, ये ग्यारहवां नहीं कहा ना, ग्यारहवां स्कंध है मुक्ति, हाँ ठीक है मुक्ति है, और द्वादश स्कंध जो है वो आश्रय है। क्यों ये द्वादश स्कंध को आश्रय कहते हैं? ये कहते इस जगत की उत्पत्ति और स्थिति लय जिस तत्व से प्रकाशित होता है वो परम ब्रह्म ही सबका आश्रय है, है ना? ये कहते हैं आश्रय वही होगा जिससे ये जो भौतिक सृष्टि है, सृष्टि और स्थिति और प्रलय जिनसे आते हैं और जिनसे फिर लीन हो जाते हैं, तो वही हमारा आश्रय है। जैसे वेद में उपनिषद में कहा गया, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशम्विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व, जिससे ये सारे प्राणी उत्पत्ति होते हैं और जिनके द्वारा ये सब पोषित होते हैं, पालित होते हैं और अंत में उन्हीं में ही लय को प्राप्त होते हैं, वो ही परम ब्रह्म हमारे आश्रय है। ये हो गया 10 सृष्टियों का वर्णन। तो अभी हमें मनुओं का बारे में जो कहा, इसमें आ गया कि मनवंतर वर्णन। मनवंतर में 6 वस्तु आते हैं, उन्हीं का वर्णन हुए। क्योंकि मनो उसमें क्या होता है ना, मनो मनुपुत्र और इंद्र और देवगण, सप्तर्षि और भगवान, ये 6 चीज है। तो यही ही संसार में ये समाज का व जीवों का विस्तार करते हैं। ये सब एक एक मनुओं के मनवंतर कार्यकाल में भगवान आते हैं। तो किस प्रकार, सभी में, सभी मनवंतर में मनु तो रहेंगे तो उनका पुत्र होंगे, मनो मनुपुत्र, और उन्हीं के वंश विस्तार होकर ये पूरा विश्व में भर गया है। सारे सृष्टि ही इन्हीं का ही देन है। और इंद्र, इंद्र एक रहेंगे देवताओं का राजा, तो मनो मनुपुत्र और इंद्र और देवगण, उनका सहायता जो देव देवता है, तो ये भी रहेंगे। और सप्तर्षि, 7 ऋषि है ना, 7 ऋषि सभी मनवंतर में रहेंगे। लेकिन सभी मनु ब्रह्मा के पुत्र नहीं है, अलग अलग है। जैसे स्वयंभुव मनु ये ब्रह्मा के पुत्र है, स्वारचिस मनु ये अग्नि के पुत्र है, इसलिए अलग अलग मनु के पिता अलग अलग है। लेकिन एक पद भी है, जैसे हमारे राष्ट्र में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो एक पद भी है। कोई भी आए उस आसन पर बैठने पर, पद पर बैठने पर, उनको हमें राष्ट्रपति कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। उसी प्रकार मनु एक पद भी है और उस पद पर जो बैठेंगे उनको मनु कहेंगे। अब जो हमारे वर्तमान काल में जो वैवस्वत मनु है, उनका नाम है श्राद्ध देव, उनका नाम है। तो उस पद पर आसीन होने पर उनका नाम मनु रखा गया है। तो इसलिए उन मनु के कार्यकाल में सप्तर्षि भी आएंगे, 7 ऋषियों का जो समष्टि है, तो उनको सप्तर्षि कहते हैं। ये सब उस मनु के कार्यकाल में ऋषियों का कार्य क्या है ना, ये कहते हैं ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, उन्होंने मंत्र को दर्शन किया है। मंत्र को कैसे दर्शन, मंत्र तो उच्चारण होता है, श्रवण होता है, दर्शन के तो चक्षु के द्वारा, मंत्र कैसे दर्शन होता है? नहीं, देखो, जिन पहले भगवान को स्तुति करते हुए जिन शब्दों को उन्होंने उच्चारण किया और उस उच्चारित शब्दों के श्रवण से व उन शब्दों से आकर्षित होकर परमात्मा भगवान जिस रूप में उनके सामने प्रकट हो गए, तो वो है दृष्टा रूप में, तो उन्हीं को मंत्र दृष्टा कहते हैं। इसलिए मुनयः व ऋषयः मंत्र दृष्टा रहे। इनका काम है केवल संसार में जो अध्यात्म चीज हुए तो उनको सुरक्षित रखना और इसी का प्रचार प्रचार करना, प्रसार प्रचार करना। इतने शुद्धता उनमें है तो मंत्र को उच्चारण करके भगवान को प्रकट करा देते हैं, ये है ऋषि। तो देखो मनु के कार्यकाल में मनु किस किन 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 लोगों को अपना कैबिनेट, अपना ये में मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, और देखो किस प्रकार वो राष्ट्र बिल्कुल सटीक और सही रूप से चलता है। और अंत में है भगवान, और भगवान अगर नहीं तो सब बेकार है, सब बेकार है। तो अंत में उन मनवंतर में भगवान को भी रखना पड़ता है, और जिनके लीला श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा मानव समाज का बिल्कुल कल्याण होता है, कल्याण वस्तु यही है अंतिम भगवान। इसलिए मनु ने, भगवान ने इस प्रकार ये सब लिस्ट बनाए उन मनु के कार्यकाल में, तो ये सब लोग रहेंगे, तो फिर प्रजा उस मनवंतर में सुखपूर्वक कालातिपात करेंगे, जो जो प्रजाओं के लिए आवश्यक वस्तु है ये सब पूर्ति करेंगे। हरे कृष्ण। समय तो हो गया, कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक छोटी सी जिज्ञासा है कि आत्मा के बारे में, जीव के बारे में जैसे बताया, और हम सब जानते हैं कि जीव शाश्वत है, ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है, प्रश्न ये है क्या कभी सृष्टि के शुरू में भगवान ने जितनी जीव आत्माएं बनाई वो आज भी उतनी ही है, और या कभी भगवान उसमें एड ऑन भी कर देते हैं?
उतने ही, उनका सृष्टि में उतने ही है,
ना घटती है ना बढ़ती है, बढ़ती भी नहीं है।
वो भगवान वो जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञाता है। तो जैसे कि हमारे भारत में कभी ऐसे ही समय था,
सॉरी
10 करोड़ लोग थे, अभी 135 करोड़ हो गए, तो जनसंख्या अधिक हो गए, तो फिर तो भगवान का सृष्टि में ये भी अधिक हो गए, ऐसे ही नहीं, तो वो सीमित है भगवान का सृष्टि में। वो भगवान जानते हैं किस समय किसको ये करना है, उतना ये ध्यान में रखकर वो सृष्टि बना है। भले ही हम वो दृश्य रूप में प्रकट नहीं हुए, अप्रकट रूप में है वो आत्मा।
नंबर ऑफ सोल्स हमेशा उतने ही रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच गुरु, यही जिज्ञासा थी।